ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் shivam.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவ மஹிமா பிரசன்ட் பாய் சுவாமி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய்.
बोलिए सच्चिदानंदवान की। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जगदम्बा मैया की जय। हरि யம் ப்ரஹ்மா வருணேந்திர ருத்ர மருத ஸ்தந்தி திவ்யே ஸ்தவே வேதைஷாங்க பத க்ரமோபநிஷதே காயந்தி யம ஷாமகா த்யானாவஸ்தி தத்கதேன மனசா பஷ்யந்தி யம் யோகினோ யஷாந்தன்ன விதுசுராசுரகணா தேவாய தஸ்மே நமஹ. நாராயணம் நமஸ்க்ருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீ சரஸ்வதி வ்யாஸம் தத்ரோ ஜயமுதீரயே. இந்திரியாணாம் அதிஷ்டாத்ரீ பூதானாம் சாகிலேஷு யா பூதேஷு சததம் தஸ்யை வியாப்தி தேவ்யே நமோ நம. வியாப்தி தேவ்யே நமோ நம. ஓம் பத்ரம் நோ அபி வாதய மனஹ. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। शिवाय गौरी वंदनाच वृंदम सूर्याय दक्षाय दशनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय தஸ்மே சிகாராய நம சிவாய. சத்கன் சித்கன் ஆனந்தகன் கல்யாண குணகண நிலை அவ்யக்த அவிநாசி சர்வேஸ்வர் ஜெகத் நியந்தா பிரபு கி அசீம் அஹேதுகி கிருபா கே சாத் பகவான் ஆசுதோஷ் சந்திர மௌலி சந்திரசூட் சந்திரநாத் சதாசிவ் के शेष शब्द पर विचार कर रहे थे। पंचाक्षर में ये मध्य का अक्षर है। नमः दो अक्षर आगे, वाया दो अक्षर पीछे, बीच का अक्षर है मध्य का शिव। ये अक्षर कैसे हैं, कितने सुंदर हैं? कथा आती है याज्ञवल्क्य ऋषि के गुरु थे वैश्वापायन जी। वैश्वापायन जी को एक बार ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या का मतलब ये नहीं समझना कि किसी ब्राह्मण को मार दिया। ब्रह्म हत्या का दोष उन्हें लगा उनके एक बार ब्रह्म सभा थी ब्रह्मवर्त पर। इस ब्रह्म सभा का निमंत्रण अर्थात ये ब्रह्म सभा क्या है, बोले सत्संग है। सत्संग का निमंत्रण जहां ब्रह्म वेताओं की ज्ञानियों की एक सभा थी सत्संग था, उस सभा का निमंत्रण आने का वैश्वापायन जी को भी मिला, परंतु वो उस सभा में नहीं जा सके। उसका कारण ये था कि उस दिन उनके घर में उनके पिता का श्राद्ध था। जिस कारण वो इस निमंत्रण में नहीं जा सके, न जाने के कारण उनको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, पाप लग गया। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कहीं सत्संग से आपको निमंत्रण मिले तो आपको उसमें जरूर जाना चाहिए। यद्यपि मैं तो ये कहती हूँ कि सत्संग के लिए निमंत्रण की जरूरत ही नहीं है। यदि जहां कहीं भी सत्संग हो वहां अवश्य जाना चाहिए। न जाने क्योंकि जीवन को बदलने की ताकत केवल सत्संग में है। सर्व अशांत आसक्ति को छुड़ाने के लिए, आसक्ति को छुड़ाने वाला केवल सत्संग है। और जब तक संसार की आसक्ति छूटेगी नहीं तब तक हमारा जीवन भयमुक्त नहीं हो सकता। और जो भयभीत जीवन है वही अशांत है, दुख रूप है। और भयमुक्त जीवन, जिस जीवन में कोई भय न रह जाए, निर्भयता जीवन में आती है तो केवल सत्संग से आती है। सत्संग जीवन में बहुत परम आवश्यक है, इसलिए सत्संग करना चाहिए, सुनना चाहिए। वैश्वानर जी सत्संग में नहीं जा सके, ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, तो गुरुदेव के ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगते हुए देखकर उनके बहुत सारे शिष्य थे, उन शिष्यों ने मन में विचार किया कि गुरुदेव की इस हत्या का हम लोग मिलकर प्रायश्चित करेंगे। सारे शिष्य मिलकर प्रायश्चित करने लगे तो बात तो ऐसी हो गई कि छोटी छोटी उन सारे शिष्यों को प्रायश्चित करते हुए देखकर याज्ञवल्क्य के मन में ऐसा विचार आया, वो सोचने लगे कि देखो ये सब जो प्रायश्चित कर रहे हैं ये तो ऐसा ही लगता है जैसे सब चीटियां मिलकर के बकरे को घसीट रही हूँ, खींच रही हूँ, तो क्या इन चीटियों से बकरा कभी खींचने वाला है, वो खींच सकता है? अर्थात गुरुदेव के छोटे मोटे शिष्य प्रायश्चित कर रहे हैं, क्या इन सबों के करने से गुरुदेव का प्रायश्चित हो जाएगा इस कर्म का? मन में ये शंका हुई। गुरुदेव को लगा कि देखो इसको दिया हुआ दीवी जो इसे जो ये घमंड है कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ और ये याज्ञवल्क को जो घमंड हो गया है ये मेरी विद्या के कारण। विद्या साददाति विनम्रता, विद्या में विनम्रता आनी चाहिए। विद्या प्राप्त होकर के विद्या का घमंड अभिमान नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने सोचा कि ये विद्या का इसे अभिमान हो गया है। गुरुदेव ने उनसे याज्ञवल्क्य से कहा कि तुम्हें ये अभिमान हो गया मेरी दी विद्या का, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम मेरे द्वारा दी हुई सारी विद्या को उगल दो। आदेश दिया, बमन करो। जब बमन कर किया उन्होंने तो एक एक अक्षर अर्थात मोती की तरह चमकने लगा। ये अक्षर कितने सुंदर है, इस पर मुझे बात स्मरण हुई कि एक एक अक्षर मोती के समान प्रकाश से युक्त चमकने लगे। इन मोती के समान चमकते हुए इन अक्षरों को देखकर उसी समय समस्त उन अक्षरों को चुन लिया, मतलब तीतर बन करके वो एक एक अक्षर को देवता लोग अन्य उनके जो शिष्य थे तीतर के रूप में उन अक्षरों को चुनकर मोती के समान ग्रहण कर लिया तो उससे एक शाखा निकली, तैतरी शाखा, वेद की तैतरी शाखा। और फिर याज्ञवल्क ने दोबारा से सूर्य की उपासना की और सूर्य की उपासना के द्वारा उनको जो वेद प्राप्त हुए उन वेदों का नाम है नारा शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें से वाजपेयी शाखा आदि है, वाजपेयी शाखा उससे प्रकट हुई। तो कहने का अर्थ मेरा ये था कि एक एक अक्षर इतना सुंदर है, इतना चमकदार है, मोती की तरह चमक रहा कहने वाला, कहने का अर्थ है प्रकाश से युक्त है। ये जो पांचों अक्षर हैं नमः और शिवाय, ये पांचों के पांचों शब्द इतने सुंदर हैं कि मोती के समान चमकने वाले हैं, प्रकाश पुंज हैं। इन अक्षरों का बड़ा भारी महत्व है। शिवाय, ये शी जो शब्द है मध्य का शब्द है, अर्थात शी शब्द से शिव है। शिव का एक अर्थ होता है योग, शिव का एक अर्थ होता है योग, इसको कहते हैं शिव योग। शिव पुराण में तप योग, क्रिया योग और जप, शिव योग ये कहकर के बताया गया है। अर्थात जप योग, शिव का अर्थ जप योग भी है, जप करना यह भी योग है, शिव योग इसको कहते हैं। भगवान के नाम का निरंतर जप करना, इसका नाम शिव योग है। भगवान की सेवा करना, ये क्रिया योग है। और शी का अर्थ भद्र होता है, कल्याण होता है। शी का अर्थ शिव जो संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण जगत में प्रविष्ट होकर के जो जगत में ऐसे व्याप्त है जैसे स्वर्ण में सोने का, सोने के टुकड़े से लेकर के हमने कुंडल बनाए, सोने को लेकर के कंगन बनाया, कंगन का आकार दिया और कंगनाकार में स्वर्ण विद्यमान है, कुंडलाकार में स्वर्ण विद्यमान है। अर्थात सोने में जब ये आकार घटित हुआ तो तब सोना उसके आकार में आके कब बस गया ये किसी को नहीं मालूम। अर्थात मालूम नहीं कहने का अभिप्राय ये है कि सोना तो है ही है, वो पूर्वत है। उसी प्रकार जो सकल सृष्टि के आकार को ग्रहण करने के से पूर्व भी जो था, आकार ग्रहण करने पर भी जो है और आकार ग्रहण नष्ट होने पर भी जो का त्यों रहेगा, ऐसा जो सनातन व्यापक तत्व है वही शिव है। इसलिए शिव का अर्थ भद्र है, शिव का अर्थ योग है, शिव का अर्थ मंगल है, शिव का अर्थ कल्याण है, शिव का अर्थ शुभ है। एक सी के बहुत सारे अर्थ है नारायण। इसलिए कहा शिवाय गौरी वंदना, और शिव के संग में रहने वाली कौन है, बोले गौरी है। शिव कैसे हैं? शिव गौर हैं। इसीलिए तो आप कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान शिव गौर है, अत्यंत प्रकाश युक्त है, प्रकाशमय है। शिव का अर्थ स्वप्रकाश भी होता है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उनके साथ रहने वाली जो आद्या शक्ति है गौरी, जिनका नाम है, ये गौरी भगवती काली, जिनको गौरी भी कहते हैं, ये महाकाल के संग में जब रहती हैं तब ये महाकाली कहलाती हैं। महाकाल जो सकल सृष्टि के संहार कारक देव हैं, जिनका नाम है महाकाल। काल जो कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, जिसकी प्रतीक्षा संपूर्ण जगत को है। काल चक्र जिसे हम कहते हैं, काल गति हमें जिसे कहते हैं, काल जिसे हम मृत्यु कहते हैं, अर्थात काल जो सकल सृष्टि को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं उसे हम काल कहते हैं। और उस काल की गति के ऊपर जो नियंत्रण करे उस शक्ति का नाम है काली। अर्थात महाकाल के संग में रहने वाली देवी जिनका नाम महाकाली है, वही महाकाली जब भगवान शिव के संग में रहती हैं तो उनका रूप कैसा हो जाता है? बोले अत्यंत गौर, काली बन करके वो सृष्टि का संहार करती है। इस पर ये काली शक्ति कैसी शक्ति है, संहार कारिणी शक्ति कैसी है, कहा कि इसका प्रत्यक्ष दर्शन किसने किया? महाभारत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। महाभारत का युद्ध हुआ और इस युद्ध को में पांडवों की जीत हुई, पांडव विजयी हुए। धनुर्धर अर्जुन के मन में ये विचार आया कि देखो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध मैंने जीता है, वो अपने आप को इस युद्ध का विजेता मानने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर को लगा कि ये जो युद्ध जीता ये धर्म के प्रभाव से ये युद्ध को हमने जीता, और नकुल और सहदेव समझे कि ये युद्ध हमने जीता, वायुपुत्र भीम सोचे कि ये यज्ञ, ये महाभारत का युद्ध हमने जीता, पांडव ये सोचने लगे कि ये युद्ध के हम विजेता हैं, हमने इस युद्ध को जीता। वास्तव में ये युद्ध लड़ा कौन और जीता कौन, पर पांडव समझ रहे हैं कि ये युद्ध हम लड़े हैं और हमने इसकी जीत प्राप्त की है। भगवान से, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये वास्तव में युद्ध जीतने का इन पांडवों को अभिमान हो गया है, और भगवान भला इस बात को कहाँ सहन कर सके कि उनके भक्तों को अभिमान हो। अभिमानोपहारी, अभिमान का हनन करना, अभिमान का मर्दन करना, और अभिमान को ऐसे अपने भक्त के अहम को छुड़ाना, ये भगवान उसे स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान देख चाहते हैं कि मेरा भक्त निराभिमानी हो, उसमें किसी प्रकार का कोई अहम न रह जाए। ये अहम का दोष दूर करने के लिए भगवान ने एक लीला रची। अर्जुन ने जब ये कहा कि प्रभु मैंने ये सारा युद्ध लड़ा, कहने लगे अर्जुन ये युद्ध किसने लड़ा ये सही सही तो कौन जान सकता है? बोले जिसने ये युद्ध देखा हो, ये युद्ध जिसने देखा हो। किसने देखा? बोले वरवरिक ने देखा कि ऊपर रखकर सिर से उन्होंने इस युद्ध को, आकाश से दूर पर्वत पर स्थित होकर उन्होंने ये युद्ध देखा, वही तुम्हें बता सकते। उनसे पूछा, उनके समीप जाकर के, ये युद्ध तुमने देखा? बोले हाँ मैंने देखा। तो अर्जुन ने सोचा कि ये युद्ध मेरी प्रशंसा करेंगे कि अर्जुन तुम बड़े ही गांडीव धनुर्धारी थे और तुमने ये युद्ध बड़े पराक्रम के साथ लड़ा, वीरता की मेरी प्रशंसा होगी। परंतु जब उनके पास जाकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो केवल युद्ध में एक ही देखा, एक दृश्य देखा। दृश्य क्या देखा? कि कोई देवी एक ऐसी है जिसके केस खुले हुए हैं, हाथ में खड्ग है और दूसरे हाथ में खप्पर है, और वह रणचंडी रण के बीच में नृत्य करती सी, नाचती हुई सी मुझे दिखाई दी, और नृत्य करते करते उसी माँ देवी ने सबको युद्ध में समाप्त किया। मैंने देखा तो सिर्फ एक काली को देखा और किसी दूसरे को नहीं देखा। तो ये जो नृत्य करने वाली कौन है? बोले महाकाल की शक्ति। वो काली बन करके जब काल के संग में रहती हैं तो वो काली बन जाती हैं महाकाल के संग में, और वही शक्ति जब पांडवों के संग में रहती हैं तो तब वो द्रौपदी बन करके, क्योंकि द्रौपदी की उत्पत्ति किससे हुई है? बोली यज्ञ से। यज्ञ से प्रकट होने वाली ये देवी यज्ञ से पवित्र हैं, अर्थात जो स्वयं अग्नि रूपा हैं, अग्नि पुत्री हैं, अग्नि की शक्ति है, जिनके अंदर दाहकता है, ऐसी दिव्य शक्ति माँ द्रौपदी हैं। तो इसलिए कहा द्रौपदी ही काली बन करके नृत्य करती हुई, ये युद्ध लड़ती हुई मुझे साक्षात रूप से दिखाई पड़ी। तो काल के संग में रहने वाली देवी का नाम है काली, और भगवान शिव के संग में रहने वाली देवी का नाम है गौरी। गौरी अत्यंत गौर वर्ण की। बोले ये गौरी कैसे हो गई? ये गौर हो गई शिव योग करते करते। शिव पुराण में कथा आती है कि भगवती उमा जब तपश्चर्या करने के लिए गई तो एक दिन तप करते करते उनका शरीर इतना गौर वर्ण का हो गया, तप का तेज उनके शरीर में ऐसा व्याप्त हो गया कि उनका नाम ही गौरी पड़ गया। तप के कारण जो अत्यंत तेजोमयी है अर्थात गौर वर्ण की हो गई, इसलिए उनका नाम गौरी हो गया, तप के कारण पड़ा। और ये तप किसके लिए किया? भगवान शिव के लिए किया। तो इसलिए कहते हैं तप योग जप योग, और जप योग भगवान शिव का नाम है। भगवान शिव तप से जप योग की प्राप्ति की जाती है। तप योग का नाम गौरी है और जप योग का नाम शिव है। शिव निरंतर जप करते हैं। भगवान शिव निरंतर जप करते हैं। बोले किसका जप करते हैं? भगवान उस महाशिव शक्ति का स्मरण करते हैं जो शक्ति उनकी दक्ष के यज्ञ में सती हो गई, अर्थात परम वियोगी शिव निरंतर उस शक्ति का ध्यान कर रहे हैं। और इधर निरंतर भगवान शिव के साथ शिव के संयोग को प्राप्त करने वाली, शिव की प्राप्ति करने के लिए निरंतर उमा तप कर रही है, वो तप योग है। इस प्रकार वो शिव को प्राप्त करना चाहती हैं। तो ये दोनों कथा शिव पुराण में आती है नारायण, इसलिए ये गौरी है। और सूर्य लोक पर्यंत तक, सूर्य लोक तक जिसका दिव्य प्रकाश है, दक्ष के यज्ञ को जो विध्वंस करने वाले हैं, दक्ष अर्थात कर्म के अभिमान का विध्वंस करने वाले, ऐसे भगवान नीलकंठ जिनके जो वृषभ पर आरूढ़ है, भगवान शंकर का वाहन है वृषभ माने बैल। ये बैल कोई साधारण बैल नहीं है, ये वृषभ तो धर्मा अवतार है, धर्म का प्रतीक है। वृषभ को धर्म कहा गया है, ये धर्म सूचक धर्म का चिन्ह है। भगवान शिव किस पर बैठते हैं? बोले वृषभ पर बैठते हैं। ये वृषभ साक्षात धर्म है। जहाँ धर्म है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वहाँ धर्म है। धर्म के साथ, धर्म के साथ जो प्राप्त होते हैं, धर्म के चार पाद हैं नारायण, चतुष्ट पाद कहे गए हैं धर्म के, सत्य दया शौच और दान, ये धर्म के चार पाद कहे गए हैं, ये वृषभ के चार पांव हैं। बोले इस कलिकाल में, इस कलयुग में जो धर्म चतुष्पाद था, अर्थात पहला पाद सत्य दया शौच, ये तीन चीजें, ये तीन पाद धर्म के कम हो गए, केवल एक पाद एक पांव रह गया है, उसका नाम है दान। जब तक ये तीन पाद और जो इसके साथ में है, धर्म क्या है? पहला कहा गया है सत्य, सत्य एक पाद है। सत्य कहाँ होना चाहिए? सत्य हमारी जिह्वा पर होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, सच बोलने के लिए कभी बुद्धि लगानी पड़ती है क्या? कुछ सोचना पड़ता है क्या? सत्य तो स्वाभाविक होता है। मैं हमेशा कहती हूँ मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। किसके लिए? झूठ बोलने के लिए। झूठ बोलने के लिए तोलना पड़ता है, झूठ बोलने के लिए सोचना पड़ता है, झूठ बोलने के लिए विचार करना पड़ता है, पर सत्य बोलने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। इतना सहज है सच बोलना, बहुत सहज है। परंतु हम लोग सोचते हैं कि सच बोलने से, इतना सहज होने पर भी सच नहीं बोलते हैं, उसका कारण क्या है? हम सोचते हैं यदि हम यहाँ सच बोलेंगे तो शायद बात बिगड़ जाएगी, झूठ बोलेंगे तो बात बन जाएगी। झूठ पर हमारा विश्वास है, झूठ बोलेंगे तो हमारा सम्मान, शायद झूठ बोलने से मेरा सम्मान बच जाए, झूठ बोलने से मेरा आदर बना रहेगा। ऐसा जो हमारा झूठ के प्रति विश्वास हो गया है, झूठ बोलने से मेरा सम्मान बनेगा, झूठ बोलने से मेरी बात बन जाएगी, झूठ बोलने से मुझे प्राप्ति हो जाएगी, इस प्रकार का हमारा विश्वास किस पर हो गया है? झूठ पर हो गया। और कभी कभी आपने देखा कि झूठ बोल करके आप बच निकल आते हैं, तो कहते हैं देखा मैंने झूठ बोला तो मेरी बात बन गई, मैं बच निकला, मेरी ये बात बिगड़ती हुई बन गई। तो आपने कभी ये विचार किया कि वास्तव में ये झूठ बोलने से बात बनी या झूठ पर विश्वास करने से बात बनी? झूठ पर विश्वास कर लिया हमने तो बात तो बनी है विश्वास से। जैसा विश्वास, जैसा निश्चय आपका झूठ के प्रति हो गया है, यदि ऐसा विश्वास, ऐसा निश्चय आपका सत्य के प्रति हो जाए, सत्य के प्रति ऐसा विश्वास हो जाए, तो निश्चित सत्य से आपकी रक्षा होगी। और बहुत से लोग कहते हैं अरे सत्य तो बड़ा ही कड़वा होता है, भला उसे कौन सुनना चाहता है। प्राय आजकल लोग बोल देते हैं सत्य बड़ा कड़वा है, पर याद रखना सत्य कड़वा नहीं है। सत्य के साथ दो चीजें जुड़ी हुई, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वो शिव भी है और सुंदर भी है। सत्य कभी कड़वा नहीं हो सकता।